حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبداللہ یا حسین علیہ السلام. لو مومن احر لشکر کفار سے نکلا، یہ نور وہی نور ہے جو نار سے نکلا. یاقوت چمکتا ہوا کوہسار سے نکلا، چاند ابر سے دین کفر سے گل خار سے نکلا. یہ شاہ ولایت کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ شاہ ولایت کی دعاؤں کا اثر ہے. حرات کو گمراہ تھا اس وقت خضر ہے. السلام علیکم ویورس، میں آپ کو اپنے پروگرام حریم الحسینی میں خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی اسپیشل اور یونیک سی گیسٹ موجود ہیں، میں آپ کا ان سے تعارف کراتی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں خواہر رباب. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟
اللہ کا شکر ہے جی.
آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام جو ہے ترتیب دیا گیا ہے، اور مختلف ٹاپکس کے ساتھ مختلف گیسٹ جو ہے ہمارے پروگرام میں آتے رہے ہیں. پروگرام کا آج کا فارمیٹ اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی یونیک، اور میرے خیال سے بہت ہی کم جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہوگی. کربلا، یعنی کہ کربلا کی سرزمین اٹسلف آج ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے، اور اس کو منتخب کیا گیا ہے. میں آپ سے بہت سے مطلب حوالوں کے ساتھ، بہت سے روایات کے ساتھ آپ سے چاہوں گی کہ آپ مجھے اور میرے ویورس کے جو ہے وہ علم میں اضافہ کریں، ہم اپنی جو بہت ہی قیمتی جو آپ کی انفارمیشن ہے وہ شیئر کریں. پہلے میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام، بہت سی روایات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دو محرم الحرام کو جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنے انصار مستورات بچوں کے ساتھ جب اس زمین پہ آئے، تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس سرزمین کا نام پوچھا. آپ یہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے پوچھا کہ اس زمین کا کیا نام ہے، تو بتانے والوں نے مختلف نام اس کے بتائے. جب کسی نے بتایا کہ اس کا نام کربلا ہے، تو آپ نے اپنے تمام انصار کو اور ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ یقیناً یہی ہے وہ جگہ جس کی رسول خدا نے فرمایا تھا کہ حسین تم اسی جگہ پہ شہید کیے جاؤ گے، اور تمہارا اور تمہارے انصار کا مزار اور مقبرہ اسی جگہ پہ بنے گا. جب آپ اترے تو آپ نے سب سے پہلے جو جملہ فرمایا وہ تھا کہ اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، کہ پروردگار میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس مصیبت میں اور اس تکلیف میں آنے سے. میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہوگا کربلا کے بارے میں کہ ویورس کو آپ یہ بتائیے کہ اس کے کتنے نام ہیں، اور اس کو ہسٹری میں کتنے ناموں سے یاد کیا گیا ہے، اور جب امام حسین یہاں اترے تو تب جو ہے اس کا نام کربلا ہی تھا اور اس کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا.
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک کہ یہ جو موضوع ہے اپنے یعنی امتیاز رکھتا ہے، ممتاز ہے تمام موضوعات سے. بہت اچھا ہے کہ خود سرزمین کربلا کو جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی خلقت میں خدا نے جو اہتمام دیا ہے، اسی طرح سے یہ کربلا کو جو اہتمام دیا گیا ہے، اسی ہستی کے طفیل اس کو حاصل ہوا. اور یہ سرزمین کربلا، خود اگر آپ اس لفظ پر جائیں کہ کربلا
دو جملوں دو ورڈ سے مل کے بنا،
بالکل
کرب و بلا،
اس کو اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں عربک، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کربلا، اگر اس کو کربلا سے لیا گیا ہو کہ یعنی اینڈ میں جو الف ہے اس کو اگر ہے میں تبدیل کر دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے یعنی سستی اور آرام آرام سے چلنا، سستی کے ساتھ چلنا. اور چونکہ یہ سرزمین نے کربلا، اس میں جب بھی کسی نے قدم رکھا ہے تو اس پر ایک سستی سی طاری ہوئی ہے، اس کا دل مغموم ہو گیا ہے اور دل گرفتہ ہو کر، ایون روایات موجود ہیں کہ انبیاء نے سوال کیا خدایا یہ کیسی سرزمین ہے.
بالکل.
اور اس سرزمین کو جو شہرت اور قداست حاصل ہوئی ہے، وہ تمام زمینوں اور شہروں اور تمام علاقوں سے جو ہے وہ مختلف ہے. اپنی یعنی اپنی زمینوں میں، اپنی ذات میں آپ یوں کہہ لیں، یہ امتیاز رکھتی ہے یہ سرزمین قداست اور شہرت کے اعتبار سے. کہ اگر ہم اس کو، ایک تو یہ ہو گیا کہ کربلا میں لے لیں، اور اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ کربلا جو ہے وہ کربال سے لیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اگر مین جو ورڈز ہیں اگر کربال ہیں، تو کربال کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز سے یعنی پاک و صاف کر دینا، कि जिस तरह से अगर गंदुम को अरबिक में अरब जब कहेंगे यानी खा को खाशाक से गंदुम को साफ़ करना चाहेंगे तो उसे करबाल का वर्ड यूज़ करते हैं। यानी अगर आप इस सरजमीन करबला को भी देखें तो ये इस पर भी फिट आ रहा है, ये इसका भी मिसलाक करार पा रहा है कि इस सरजमीन में अगर हम जाएं तो इंशाल्लाह कि हम सब उस
इंशाल्लाह
की
खुदा
जियारत
ताला हमें
करें,
इसकी तौफीक दे।
हर जो है वो ख्वाहिशमंद यहाँ तक पहुँचे कि अगर आप उस सरजमीन को पर तवज्जो करें तो वो सरजमीन हर किस्म के दरख्त गियाहों और संग यानी पत्थरों से
पाक है,
ऐसे
बिल्कुल
जिस तरह
साफ,
किसी ने
फ्लैट,
साफ कर दी हो किसी
बिल्कुल
काश्त के लिए,
बिल्कुल
और वो काश्त हुआ है हुसैन और असहाब
असहाबे हुसैन,
के
बिल्कुल
खून
खून
से
से,
काश्त किया गया है।
बेशक
तो अगर इसको हम करबाल के में उससे लें मसदर से तो ये इस पर भी फिट आती है, लेकिन खुद जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने और उनके जो और हमारे जो नबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
अल्लाहुम्मा सल्लम,
वसल्लम, उन्होंने भी करबला को जो तफसीर किया है वो करबोबला से किया है कि इसमें चूंकि मसाइब और परेशानियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं इस सरज़मीन में कि तमाम अंबिया जो हैं उन्होंने भी इस को परेशानी को सहा है, तो इसलिए इस सरज़मीन को करबला कहा जाता है। जैसा कि इसको गाजरिया कहा जाता है, यह अरेबिक बुक्स में अगर आप देखें तो उसको तफ़ के वर्ड से याद किया गया है रिवायात में, या तफ़ुल फुरात के किनारे जो सरज़मीन है, या गाजरिया है, महलुल वफ़ा कहा जाता है, नैनवा भी बहुत
नैनवा,
मारूफ
बिल्कुल
है,
बहुत मारूफ,
नैनवा कहा जाता है, मारिया कहा जाता है, अमूरा, सफूरा, मदीनतुल हुसैन, मशहदुल हुसैन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यानी शहादत के बाद जो है वो उसको जिसको कहा गया है, या बुकात मुबारका कहा जाता है, तुराफ करबला, या इसके अलावा जो है वो शातिल फुरात, और भी बहुत से नाम हैं इसके।
यानी कि करबला की सरजमीन, अगर हम करबला का मुताला करें, सिर्फ करबला की अपनी हिस्ट्री को देखें, तो ये हमेशा से बहुत इम्तियाज़ रही है और
बिल्कुल
बहुत मारूफ रही है, और खुदावंद ताला ने इसको हमेशा से दूसरी सरजमीन की निस्बत से बहुत ऊंचा और बुलंद मकाम अता फरमाया
बिल्कुल
है।
इस दुनिया में भी और रोज़े कयामत भी, इवन जो है वो हमें ऐसी रिवायात मिलती हैं कि इस सरज़मीन करबला को जब कयामत आएगी तो इसको अपनी मट्टी के साथ
समेत उठा लिया
बुलंद कर
जाएगा,
दिया जाएगा,
सुभान
रिवायत
अल्लाह,
में मिलता है कि मट्टी के साथ बुलंद कर दिया जाएगा और बहिश्त में के साथ मुलहक किया जाएगा, और ये वो सरज़मीन होगी कि जिसमें वो जन्नत का वो हिस्सा और टुकड़ा होगा कि जिसमें अंबिया और अहले बैत अलैहिस्सलाम
सुभान
मुकीम
अल्लाह कायम
होंगे।
करेंगे।
और
यकीनन जिस
इसका क्या
सरजमीन में
कहना,
खून हुसैन शामिल हो तो उसकी
बिल्कुल
क्या मंजिलत होगी।
बिल्कुल, और तमाम अम्बिया को इंट्रोड्यूस करवाया है, मुतारिफ़ करवाया इस सरज़मीन से, तमाम अहले बैत को इससे मुतारिफ़ करवाया है।
यानी कि खास तौर पे खसूसी इंतजाम किया गया करबला की सरजमीन का, तारुफ कराया गया कि एक तो एक इस पे जो वाकया रूनुमा होने जा रहा था, यकीनन वो
बिल्कुल
आजकल तक उसकी तारीख
बिल्कुल,
नहीं
खुदा
बन,
अपने इल्म अज़ली से जानता था, उसने इस इमाम हुसैन के तुफ़ैल इस सरज़मीन को जो
जो इज्जत
एहतमाम दिया है,
और
जो
जो
इज़्ज़त
मकाम
और अज़मत
बख्शा,
दी है, कि
बेशक
हत्ता रिवायत में है कि फरिश्ते यानी अहले आसमान के लिए ये सरज़मीन करबला इस तरह से चमक रही होती है और उनकी आंखों को चुंधिया देती है जिस तरह से अहले ज़मीन को आसमान पर चमकने वाले सितारों
सितारे
में
नजर
कुछ
आते हैं।
सितारे की चमक इतनी ज़्यादा होती है जिसमें
सुभान अल्लाह
इंसान की
सुभान अल्लाह
आंखें चुंधिया जाती हैं, उस
सुभान
तरह
अल्लाह
से उन
सुभान
फरिश्ते
अल्लाह,
जो है वो उनकी निगाहें चुंधिया जाती हैं सरज़मीन करबला के नूर और उस रोशनी
वाह।
को देखकर।
फिर जिस जिस सरजमीन पे पंचतन पाक जो है वो खुद तवाफ के लिए तशरीफ लाएं, हुसैन अलैहिस्सलाम की ज्यारत के लिए, जहाँ पर शहदाए करबला जो है वो मदफन है, उनका खून शामिल है, तो यकीनन खुदावंद ताला को खुद वो सरजमीन किस कदर पसंद होगी।
बिल्कुल, इमाम
जो
अली अलैहिस्सलाम जिस तरह से रिवायत में है कि जब गुजर रहे थे उस सरज़मीन से अपने दो असहाब के साथ, तो उनसे फरमाया कि इस सरज़मीन में मेरा फर्जंद जो है वो शहीद किया जाएगा,
बेशक बेशक
और फिर उस सरज़मीन से मुखातिब हुए मौला अमीर अल-मोमिनीन और कहा कि खुशाबहाल है, यानी ए सरज़मीन तुम खुशकिस्मत हो
कि
कि
तुझमें
तुम में
हुसैन
हुसैन
अलैहिस्सलाम,
जैसा फर्जंद मेरा जो है वो दफन किया
सुभान
जाएगा।
अल्लाह। अगर हम करबला को इसके साथ साथ अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, तो हमें अंबिया अलैहिस्सलाम का भी इसमें काफ़ी जो है वो नज़र आता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को भी खुदावंद ताला ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस बुला कर और दिखा कर इस सरज़मीन की जो है वो अज़मत और मर्तबा बताया है। अगर हम देखें तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है और ख़ातमुन नबीयीन तक जो है ये
बिल्कुल
सिलसिला हमें चलता हुआ नज़र आता है। तो मतलब मैं ये चाहूंगी कि आप व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि जिस तरह अंबिया को खुदावंद ताला ने उस सरजमीन पर बुलाया और दिखाया कि ये सरजमीन, क्योंकि सरजमीन हुसैन है, तो जो चीज़ हुसैन से मुंसलिक हो जाए उसका क्या मकाम होता है।
बिल्कुल, जिस तरह से रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस सरज़मीन पर उतारा गया, क्योंकि जो तो एक तरके औला अंजाम दिया गया था, तो सरज़मीन पर जब ज़मीन पर उतारा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हवा को तलाश कर रहे थे, और उसी तलाश करने के सिलसिले में जब वो सरजमीन करबला पर
बेशक।
पहुंचे हैं तो उनका दिल मगमूम हो गया, मुजतरिब हो गए, और आंखों से अश्क जारी हो गए। तो खुदा से कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कि खुदाया, क्या मुझसे क्या और कोई गुनाह या कोई तरके औला सरजद हो गया है कि जिसकी सज़ा मुझे ये मिल रही है? तो खुदा ने की जानिब से आवाज़ आई कि नहीं ए आदम,
यकीनन ये वो सरजमीन है।
बिल्कुल ये वो सरजमीन जिस पे तुम दाखिल हुए हो, ये सरजमीन करबला है।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो कहा सरजमीन करबला, तो आवाज आई कि हाँ ये वो सरजमीन है कि जहां पर तुम्हारे फर्जंद हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो उनको शहीद
शहीद
किया
किया
जाएगा।
जाएगा।
तो कहा कि अच्छा उन्हें कौन शहीद करेगा? तो जब खुदा की जानिब से निदा आई कि उसे यजीद
मलऊन।
मलऊन जो है वो उसको शहीद करेगा, तो कहा कि अच्छा फिर मेरा क्या वजीफा बनता है, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ उस कातिल हुसैन के लिए? तो खुदा की जानिब से क्या हुक्म आया?
कि
कहा कि
लानत का
तुम
है।
जो है वो उस यजीद पर, उस कातिल हुसैन पर लानत भेजो। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने
बेशक
4 मर्तबा उस
लानत
मलऊन
की।
पर
बेशक
लानत भेजी।
बेशक
और यही सिलसिला जो है वो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को
हिसाब भी
भी
हमें
इस
मिलता है।
सरजमीन के मुतारिफ करवाया गया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब तूफ़ान नूह जब आया है तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो सबसे ये को हुक्म दे रहे थे कि जल्दी से सवार हो जाओ कि खुदा का अज़ाब नाजिल हो चुका है, और हाँ बच्चों को मत भूलना। और जब सब कश्ती में सवार हुए हैं और ज़मीन और आसमान से जब पानी की बौछार शुरू हो गई और तेज़ हवाएं चलने लगी और
और
कश्ती
तूफान आ गया।
तूफान आया,
बेशक।
तो कश्ती जो है वो रवा रवा हो गई अपने रास्ते की जाने। लेकिन जब एक सरजमीन आई और वहाँ पर एक वक्त ऐसा आया कि वो कश्ती रुक
डगमगाने
गई,
लगी।
डगमगाने लगी और रुक गई, अब आगे नहीं चल रही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा से कहा कि खुदाया ये क्या हुआ? उस माजरे का सबब पूछा तो खुदा की जानिब से निदा आई कि
कि ये
ये
करबला
सरजमीन
है।
करबला पहुँच गई है।
बेशक, यानी कि हर अंबिया के लिए आजमाइश की सरजमीन जो है वो कर्बला रही है।
बिल्कुल
और
ये
इसके साथ साथ ये भी कि मतलब खुदावंद ताला ने जब भी अंबिया का रुख उस सरजमीन की तरफ किया तो खुदावंद ताला ने उनको भी सिर्फ ये बताने के लिए कि ये हुसैन की जमीन है, तो यहाँ से गुजरने से पहले या गुजरते वक्त तुम इस बात का ख्याल रखो कि इसकी इज्जत
यानी
इस वाकई
जितनी
में कमी ना
मारिफत
हो।
उनको दी जा सकती थी
बाकायदा
हुसैन के
रोक के
बारे में,
बताया गया उस
बिल्कुल
सरजमीन को।
उतनी मारिफत जो है वो जितनी देनी चाहिए थी, जितनी दी जा सकती थी, उतनी मारिफत तमाम अंबिया को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में दी गई है।
अब मैं आपकी इतनी खूबसूरत बातों को, दिल तो नहीं करा कि यहाँ पे मैं एक मतलब कट करूँ और ब्रेक लूँ, लेकिन आपको पता है कि इट्स पार्ट ऑफ आर प्रोग्राम एंड वी हैव टू टेक अ ब्रेक। तो छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा से व्यूअर्स यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। और अपने कलाम को और अपनी जो गेस्ट जो हमारे इतने खूबसूरत कर्बला के हिस्ट्री के बारे में हमें डिटेल्स देने थे उसी को वहीं से जोड़ते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपना सिलसिला वहीं से जोड़ें जो आप अंबिया अलैहिस्सलाम और कर्बला का जो रब्त है वो हमें बता रही थी, ताकि व्यूअर्स जाने कि हर अंबिया किस तरह से कर्बला से इंट्रोडक्शन में आया और किस तरह कर्बला उनको इंट्रोड्यूस की गई खुदा की जानिब से।
बिल्कुल जिस तरह से था सिलसिला के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलिल अज़्म नबी हैं, और जब ये इनका देखें हम इस सरजमीन से जब गुज़र रहे थे अपने सवारी पर, जब एक सरजमीन करबला पर पहुँचे हैं तो उनकी सवारी को ठोकर लगी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मकाम पर आकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़े कि जिसको रिवायत कहती है वो गुदाले कतलगाह थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि वहाँ पर आकर गिर पड़े और फिर जो है वो उठे हैं और दोबारा जब सवार हुए हैं और खुदा से सवाल किया बारे इलाहा ये कैसी सरजमीन है कि जहाँ पर जो है वो उनका यानी खून बहा। हज़रत इब्राहिम का एक फरिश्ता नाजिल हुआ और कहा कि ए इब्राहिम तुम क्योंकि हज़रत इब्राहिम जब गिरे हैं तो उन्होंने खुद बिल्कुल उन्हीं दूसरे अम्बिया के मानिंद जो है वो सवाल किया कि बारे इलाहा क्या मुझसे कोई ख़ता सरजद हो गई है? तो खुदा क्योंकि कहते हैं ना कि इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई इस दुनिया में जो आजमाइशें आती हैं ये कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो
कोई
असल
नाकर्दा
में
गुनाह या कुछ ऐसी
बिल्कुल
चीज।
किसी गुनाह यानी वो इसलिए होता है कि वो एक सज़ा इस दुनिया में मिलकर गुनाह तो उसको ताकि खुदा
धुल
माफ़
जाए।
कर दे,
बेशक बेशक खुदा माफ कर दे उस गुनाह
बिल्कुल
को।
गुनाह माफ़ हो जाए। तो इसी तरह से वो अंबिया भी सवाल कर रहे हैं हमसे कोई ख़ता सरजद हुई है कि जिसकी सबब जो है वो हमारे साथ इस तरह से हुआ है, हम इस आजमाइश में मुबतला हुए हैं, उस मुसीबत में पड़े हैं। तो निदा आई कि नहीं ए इब्राहिम बल्कि ये वो सरजमीन कर्बला है कि जहाँ पर हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाएगा। तो सवाल किया, अच्छा हुसैन को, हुसैन कौन? तो बताया गया कि हुसैन जो आखिरी, ये जो सिलसिला नबूवत चला आ रहा है हज़रत आदम से, वो सिलसिला जो है वो आखिरी नबी पर जिस पर ख़त्म किया जाएगा, उसके नवासे को, उसके फरजंद को यहाँ पर
जो कि
शहीद
बिला इला
किया
इला
जाएगा।
है,
बिल्कुल
बकाए दीन है, दीन की
बकाए
निजात है,
दीन है। तो
उनको वहां
उनसे
पे
कहा
शहीद
कि
किया
अच्छा
जाएगा।
इनको कौन शहीद करेगा, कौन कत्ल करेगा? तो कहा कि यजीद जो है वो कत्ल करेगा।
मलून
और
लानत
फिर
कुछ।
हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि बारे इलाहा, फिर मुझे मेरा क्या जिम्मेदारी बनती है कि मैं क्या करूं? तो खुदा की जानिब से जो अम्र आया है वो यही कि इस पर लानत
लानत
भेजी जाए।
भेजिए।
तो अब जो इस्लाम के मुखालिफ हैं तो फिर हमें जो है वो उसको बुरा कहना पड़ेगा, उस पर लानत करनी
करनी
पड़ेगी।
पड़ेगी
और ये
बेशक
उसको लानत करना, उस पर को मलऊन करार देना जो है वो इस्लाम को सपोर्ट करेगा, इस्लाम की
बेशक
हिमायत है ये।
बेशक।
जिस तरह से खुदा उनके भी हुक्म दे रहा है, अम्र कर रहा है हज़रत इब्राहिम को कि तुम जो है वो उस कातिल हुसैन पर लानत भेजो।
बेशक।
और फिर इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो है वो हिस्ट्री में, उनकी तारीख में अगर आप देखें तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको जो है वो हुकूमत और सल्तनत जो दी गई है वो किसी नबी को नहीं दी गई। तो जब उनका यानी हवाओं पर भी जो कंट्रोल था, और वो हवाओं में एक उनकी बिसात थी, एक गालीचा जिसमें वो सैर कर रहे थे, आसमान में की सैर कर रहे थे, कि उसी सैर में जो है वो जब वो सरजमीन करबला से ऊपर के ऊपर से जब गुजरने लगे हैं तो वहाँ पर उनकी बिसात लड़खड़ाने लगी और जो है वो रुक गई। और ऐसा कभी वाकया माजरा हज़रत सुलेमान के साथ नहीं हुआ। वो परेशान हुए और कहा ये क्या माजरा है कि अब जो है वो हवा मेरे कंट्रोल में नहीं रही है। अब जो क्योंकि हवा की बेस पे जो उड़ रहे थे, कहा हवा मेरे कंट्रोल में नहीं रही है। तो उस हवा ने जवाब दिया कि ये कत्लगाह हुसैन पर हम आन पहुंचे हैं। तो सुलेमान ने कहा हुसैन, हुसैन कौन है? तो उस हवा ने जवाब दिया, उस हवा ने डिड्यूस करवाया खुदा के हुक्म से कि वो फर्जंद अली इब्ने अबी तालिब और खातिमुल अंबिया की बेटी के बेटे हैं।
वाह,
और
करबला
जब
के जिस सरजमीन की इतनी अज़मत होगी तो उस पर शहीद होने वाले इंसान की हस्ती की क्या फजीलत होगी खुदावंद ताला की नज़र में।
बिल्कुल, तो फिर वही उसी
एक
तरह
लाख
से उसी
अंबिया की
पैटर्न
मेहनत को
पर
बचाने वाले ही हुसैन है देखा जाए
बिल्कुल
तो
सही।
यकीनन इसीलिए खुदा इन तमाम अंबिया को रोक रोक के बता रहा है कि तुम रुको और उस जगह का एहतराम करो जहाँ हुसैन अपने अंसार के साथ शहीद किए जाएंगे।
बिल्कुल, और इसी तरह से जो है वो हज़रत सुलेमान ने जो है वो उसी पैटर्न पर जो है वो लानत भेजी खुदा के हुक्म से। और फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तरफ आ जाएँ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस सरज़मीन पर जब पहुँचे हैं तो उनकी जो है वो नालायन उतर गई और उनके पाँव पर कांटा चुभा जिसकी वजह से उनका खून निकला,
तकलीफ हुई।
तकलीफ़ हुई। तो हज़रत मूसा ने कहा परवरदिगारा क्या मुझसे कोई गुनाह सरजद हुआ है? तो फिर जो है वो निदाए परवरदिगार आई कि गुनाह सरजद नहीं हुआ है मूसा, मुतमईन रहो, बल्कि तुम ऐसी
सरजमीन
सरजमीन पर
हुसैन
पहुंचे
है,
हो। फिर
वाह,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद किया और उसी तरह से जो है वो
लानत की यजीद
लानत की,
पर,
क्योंकि खुदा ने कहा कि
कातिलाने
उसका
हुसैन पर।
कातिल जो है वो होगा कि जिसको दरिया की मछलियां और सहरा के जो वाशी हैं, हवा में उड़ने वाले परिंदे भी जो है वो उन पर लानत भेजते हैं। तो इसी तरह से अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये आखिरी जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत दिलचस्प भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने हवारियों के साथ इस सरज़मीन पर पहुँचे हैं तो उन्होंने देखा कि एक वहाँ पर शेर बैठा हुआ है, एक
वाह,
शेर बैठा हुआ है। कुछ हवारी आगे बढ़े और कहा कि नहीं मालूम कि नबी खुदा जो है यहाँ से गुजरना चाहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो कि जो यहाँ पर इनको जो है वो यहाँ पर इस गुजरने वालों की राह में रुकावट बनो,
बेशक
क्योंकि लोग खौफजदा होते हैं। तो वो शेर जो है वो क्योंकि नबी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो मुर्दों को ज़िंदा कर देते हैं, जो लाइलाज मरस के वो इलाज कर देते
इलाज
हैं,
बिल्कुल
वो
शिफा
नबी
देते हैं।
हैवान की ज़बान को समझते हैं, और हैवान जो है वो नबी कुदरत इलाही से गुया हुआ। और उसने कहा कि ये सरजमीन करबला है और इससे पास होने का, इससे गुजरने का, आप यूं कह लें ना कि गुजरने का जो वीज़ा है वो क्या है, उस वक्त तुम यहाँ से गुजर सकते हो कि जब तुम कातिले हुसैन पर लानत भेजो। और
वाह,
जब उन हवारियों ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कातिले हुसैन पर लानत भेजी है, तो उसके बाद से वो शेर जो है वो हटा है اور غائب ہوا اور
اور آپ
پھر
کو
وہ وہاں
راستہ
سے
دیا اور آپ وہاں
گزر
پہنچے.
سکیں. تو خدا نے کس طرح سے مختلف انداز میں تمام انبیاء کو متعارف کروایا، خود پیغمبر گرامی کو متعارف کروایا اور امام علی علیہ السلام کو، جناب زہرا، سب اس حالات ان حالات سے واقف تھے.
سبحان اللہ. اگر ہم دیکھیں تو کربلا کی سرزمین جو ہے اس کو یہ عزت، یہ شرف، یہ بلندی، یہ مرتبہ، یہ منزلت ملی ہے تو یہ صرف اور صرف قدم حسین کا صدقہ ہے،
بالکل
خون حسین کا صدقہ ہے جو سرزمین کے اندر رچ بس گیا. اگر ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو ہم خاک کربلا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟
بالکل
خاک شفا، یقیناً یہ وہ خاک جو کہ حسین کے نام سے منسوب کر دی گئی ہے، وہ شفا خاک ہے جس میں شفا رکھ دی گئی ہے. یقیناً تمام دنیا کی جتنی بھی مٹی ہے اور جتنی بھی خاک ہے اس سب میں جو فضیلت دی گئی ہے وہ خاک شفا کو دی گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر مریض کو ایک چٹکی خاک شفا کھلا دی جائے تو اس کو شفا نصیب ہوگی. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ تبرکن اس کو اپنے کاموں میں استعمال کریں تو آپ کے کاموں میں یقیناً جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ برکت نازل ہوگی. میں چاہتی ہوں کہ خاک شفا کے حوالے سے بتایا جائے کہ ویورس کو پتہ چلے کہ خاک شفا کی کیا اہمیت ہے، اور جب اس میں خون حسین جو ہے وہ مل گیا اور جو تبرکن ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت و اہمیت ہے؟
بالکل، یہ خاک شفا خود ایک بہت وسیع موضوع ہے کہ جس پر ایک تفصیل سے بات کی جائے، لیکن مختصراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو خدا نے جو ہے وہ
خود سے
ایک
پسند
مقام
کر
دیا،
لیا
ایک
اور مقام
عظمت دی
دیا.
ہے.
بے شک
تو سرزمین کربلا کی جو خاصیت اور جو ہے اس کا تو کیا کہنا کہ جو بہشت کے ساتھ ملحق ہو جائے
واہ
گی، اور
واہ
وہ بہشت جس کو خدا نے مزین کیا ہے حسن حسین سے،
واہ،
کیونکہ
سری کے
روایت
سردار ہیں آپ.
بالکل روایت میں ہے نا کہ خدا نے بہشت کو حسن حسین کے وجود سے مزین
واہ
کیا ہے.
واہ،
یعنی ایک
سبحان اللہ.
جس ہم گھر کو ایک چیز سے مزین کرتے
ہر گھر کی
ہیں، آراستہ
خوبصورتی کا
کرتے ہیں،
ڈیکور کا
خوبصورت،
ایک
بالکل.
ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور ان کا ذریعہ سے حسن
اور بہشت کا
حسین.
معیار کیا ہے؟ بہشت کی زینت کا معیار حسن حسین جیسی
واہ
ہستی ہیں،
واہ
اور جس جس سرزمین میں وہ مزین، جو بہشت کی زینت کا معیار ہے، وہ اگر اس جس سرزمین میں دفن کر دی جائے
لیکن اس
تو
سرزمین کی خاک کو کیا کہنا ہے؟
کیا کہنا.
میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اپنی اتنی خوبصورت معلومات، انفارمیشن، اپنے جتنے بھی آپ کے کربلا کے حوالے سے جو آپ نے ڈسکشن کیا ہمارے ساتھ، یقیناً وہ میرے لیے اور میرے ویورس کے لیے بہت نئے تھے اور بہت ہی خوبصورت تھے. اور ہم نے نہیں اور میرے ویورس نے یقیناً آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا، سنا اور سمجھا. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور آپ نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگا دیا. تھینک یو سو مچ. ویورز، ہمیشہ کی طرح پروگرام کا اینڈ جو ہے وہ اسی بات پہ کروں گی کہ یقیناً ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تو نہیں تھے، لیکن ہم صرف اور صرف یہ کوشش اور یہ دعا کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے وقت کا امام ظہور کرے تو خداوند تعالی ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم ان کی آواز پہ لبیک کہیں اور اس اتوار حسین پہ چل کے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں جو یقیناً حسین علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں، اور جس طرح امام الزمانہ علیہ السلام کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. خداوند تعالی ہم اس میں کامیاب و کامران کرے. اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اگلی دفعہ ایک نئے گیسٹ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ آؤں گی اور آپ سے ملوں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
حسین 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 حسین